समय 136वां कलश चलेगा समय सार का, पेज नंबर है समय सार में 312 और समय सार अनुशीलन में 163। सम्यग् दृष्टि भवति नियतम्। कल ये बात कही गई थी कि सम्यक् दृष्टि जीव को और मिथ्या दृष्टि जीव को में क्या अंतर है। दोनों एक से भोग बाहर से भोगते हुए दिखाई देते हैं, न केवल क्रिया में बल्कि उनके परिणाम भी वैसे ही दिखाई देते हैं। गुस्सा आता है तो गालियां बकते भी दिखाई देते हैं, हाथ पैर चलाते भी दिखाई देते हैं। ऐसे जो भी कसाय है उसके वेग में जैसी जैसी क्रियाएं लोक में होती हैं देखी जाती हैं, वे वे क्रियाएं और उस तरह भावात्मक परिणमन भी देखने में आता है। फिर भी ज्ञानी सम्यक् दृष्टि को बंद नहीं होता है और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को वैसी ही परिस्थिति में बंद होता है। तो इन दोनों में वास्तविक अंतर क्या है? देखो, ऊपर से हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन अंतर में बहुत अंतर होता है। रामचंद्र जी उसी भव से मोक्ष गए और लक्ष्मण जी कहाँ गए वो सब आपको पता है। अब ऐसी परिस्थिति में उनके हम काम देखते हैं तो शुरू से लगभग एक से ही कामों में दोनों व्यस्त रहे और हर काम में साथ रहे। नारायण और बलभद्र का ऐसा होता ही है, अकेले राम और लक्ष्मण की बात नहीं है। जो नौ नारायण और नौ बलभद्र हुए हैं उनकी भी ऐसी ही परिस्थिति थी। उनमें बहुत परस्पर में तीव्र प्रेम होता है और वे सारे निर्णय मिलकर के ही करते हैं, लड़ाइयां लड़ते हैं, जो भी होता है। फिर भी दोनों के फल में इतना अंतर दिखाई देता है। प्रत्येक नारायण नरक जाता है। तदस नारायण जो पहला नारायण था ना, जो भगवान महावीर का जीव है मारीच का, वो तो सीधा सात में नरक गया था। ये ऐसे बहुत से मतलब जीवों की परिणति की बात आती है। तो जब दोनों की क्रियाएं और भाव लगभग एक से देखे जाते हैं तो उन दोनों के परिणामों में फल में इतना अंतर क्यों? तो एक सीधा सच्चा जवाब तो हम दे सकते हैं जो आसानी से सबके गले उतर जाए कि भाई उन्होंने दीक्षा ले ली, आत्मा का ध्यान किया, अब वो बात में लक्ष्मण ने कहां साथ दिया, तो वे मोक्ष गए वो तो उसकी वजह से गए। जब तक वो राजकाज में रहे तब तक जो उन्होंने मिलके काम किया उसका वो फल मोक्ष नहीं है। जब लक्ष्मण का स्वर्गवास हो गया और उसके बाद रामचंद्र जी ने जो धर्म में पुरुषार्थ किया वो उसका फल है, कह नहीं ना। और लक्ष्मण के लिए भी कहते थे राम के इतना तीव्र मोह में कि राम की मृत्यु का समाचार सुना तो उसी वक्त वो एकदम बेहोश हो गए, वो बर्दाश्त नहीं कर सके, वो मर गए। हम उस दोनों घटनाओं से उसे जोड़ देते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति जो यहां समझाना चाहते हैं वो कहते हैं ये नहीं, ये तो बहुत प्रथमानुयोग का जवाब है, माने बहुत स्थूल जवाब है। उन दोनों की परिणति में ही शुरू से अंत तक बहुत बड़ा अंतर था, पर यदि हम बहुत बारीकी से उनके जीवन चरित्र को देखें, जो भी उपलब्ध है उसे भी, तो वो अंतर हमें स्पष्ट दिखाई देगा। मैं सिर्फ एक उदाहरण जो राम है पद्म पुराण का, वो तुम्हारे सामने रखता हूं। श्रीलंका और राम का और रावण का युद्ध चल रहा था, युद्ध के बीच में अष्टान्निका आई, तो रावण की तरफ से प्रस्ताव आया, रावण की तरफ से आया कि भाई पर्व के दिन है और इसमें हमें कम से कम इसे युद्ध विराम रखना चाहिए, 8 दिन हम युद्ध विराम रखें और तुम भी अपनी धार्मिक प्रवृत्ति में लगो, हम भी अपनी धार्मिक प्रवृत्ति में लगेंगे और 8 दिन बाद फिर अपनी लड़ाई वैसी की वैसी वहीं से शुरू कर देंगे। फिर शतरंज की वाली अपन बिछा देते हैं ना, अब कहीं खाना खाने जाना हो, कहीं काम से जाना हो तो कहते भाई कमरा के बंद कर दो, गोटें जैसी हैं वैसी की वैसी रहने दो, ईमानदारी से द्वारा आएंगे तो जहां बाजी हम छोड़ेंगे वहीं से शुरू कर देंगे। क्या मैंने युद्ध की हम एक पोजीशन रखे, भले मोर्चा हमने छोड़ दिया लेकिन फिर उसी पोजीशन में आके और लड़ाई लड़ेंगे, और उन रामचंद्र के ग्रुप ने ये समझौता स्वीकार कर लिया। अभी ये धार्मिक बात है ना, वो ऐसे समय था कि रावण के लक्ष्मण ने इंद्रजीत और कुंभकर्ण को नागफांस में बांध लिया था और काफी उनका संघ को युद्ध में बहुत क्षति हो चुकी थी। तो रावण ये समझता था कि भाई अभी कैसे इनको जीतेंगे, तो उसने कहा कि भाई ये तो बराबर पकड़ते जा रहे, मारते जा रहे, तो अपन को भी ऐसा कर देंगे। तो उसने एक बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए कोशिश की। बहुरूपणी विद्या का मतलब ये होता है कि यदि उसका एक सिर काटो तो 2 हो जाएंगे, 2 काटो तो 4 हो जाएंगे, मैंने उसे जो करोगे नुकसान उसे डबल फायदा हो जाएगा। बहुत अनेक रूप धारण करते जाएंगे, वो बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए उसने जो चंद्रपुर भगवान का चैत्यालय था, उनका मंदिर था, मतलब चैत्य माने होता है जिन बिंब और आलय माने होता है घर, चैत्यालय माने मंदिर ही। अभी हम क्या समझते हैं, चैत्यालय जिसमें गुम्बच नहीं होती है वो चैत्यालय, जिसमें गुम्बच होती है वो मंदिर। फिर ऐसा भेद करते हैं जो घरों में होते हैं वो चैत्यालय और जो बाहर होते हैं वो मंदिर। ऐसा भेद कुछ है नहीं। चैत्य माने होता है जिन प्रतिमा, उनका आलय माने चैत्यालय, जिन प्रतिमाओं का घर। खासकर अकीर्तन चैत्यालय जो आते हैं ना, जिनकी वंदना आप करते हो, पूजन करते हो जिनकी, तो वे अकीर्तन माने किसी ने बनाए नहीं है, वे अनादि से हैं। जैसे पर्वत वगैरह होते हैं ऐसे वो जिन अनादि हैं, अकीर्तन जिन चैत्यालय। तो चैत्यालय क्यों बोलते हैं, उन्हें जिनालय क्यों नहीं बोलते हैं? वस्तु स्थिति तो ये है कि वो प्रतिमाएं हैं, वो महावीर की आदिनाथ की नहीं है। अनादि से तो किसी आदिनाथ महावीर की हो नहीं सकती ना, तो वो सिर्फ जिन बिंब हैं, जो अरहंत अवस्था में जैसे होते हैं ऐसे बिंब हैं, किसी व्यक्ति के नहीं हैं। तो उसे महावीर जिनालय तो उसे कह नहीं सकते, श्रीमंदा जिनालय नहीं कह सकते, तो वो चैत्य हैं, उन्हें चैत्य बोलते हैं। वो जो वहां जन प्रतिमाएं बनी हुई हैं, उनका सब आकार प्रकार शास्त्रों में वर्णन है, उनको बोलते हैं चैत्य। और इसलिए उनका जो घर है जहां वे होते हैं वो अकेले ऐसी प्रतिमा ही थोड़ी खड़ी होगी, उसके ऊपर आमने सामने परिकर भी होगा, छत भी होगी वो भी, इसलिए उनमें जो उनका जो घर है उसे चैत्यालय, चैत्यालय होंगे। माने हम ये नहीं कहते थे महावीर का है या आदिनाथ का है, अब ये अनादि अनंत हैं। अब वो एक चैत्यालय है इसलिए उन शब्दों का चैत्य, हम छोटा सा माने चैत्यालय और बड़ा माने मंदिर। जब हम यहां बात करते हैं अरे बोधगया जी ने मंदिर थोड़ी बनाया था, बोधगया जी ने एक थोड़ा सा चैत्यालय बनाया था, उनका मेन उद्देश्य तो ज्ञान का प्रचार था, इसलिए स्वाध्याय का भवन इतना बड़ा बनाया और मंदिर कोने में इतना सा छोटा बनाया। अरे मंदिर तो ही बनाया था, उन्होंने तो चैत्यालय बनाया था। मैंने हम छोटे का धीरे धीरे वो छोटे का प्रतीक हो गया चैत्यालय और बड़े का प्रतीक हो गया मंदिर। मैं यही बात कहता हूं क्या हाथी के बच्चे को बड़ा मेंढक कहा जा सकता है कि बड़े मेंढक को हाथी का बच्चा कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता ना। ऐसा भेद क्या है नहीं, लेकिन जगत तो स्थूल बुद्धि वाला है ना, और स्थूल अर्थी ऐसा देखता है ना कि छोटे छोटे उनको चैत्यालय लिख दिया हमने, बड़े में मंदिर लिखा, तो धीरे धीरे हमारे दिमाग में घुस जाता है कि वो चैत्यालय है या छोटे होते हैं मंदिर बड़ा होता है। अब वो भी जिसने बनाए उसके दिमाग में भी पहले से ऐसा ही घुस जाता कहीं से, नहीं तो वो नाम नहीं रखता, उसका नाम भी जिन मंदिर रख देता। मेरा मतलब समझे ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो तो यहां अपनी जो अपने कलश पड़ रहे हैं ना, ये बात इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि इस कलश में वो जो बात पिछली गाथाओं में आई थी क्या कि सम्यक दृष्टि के वो ही बोल रहे हम रावण की चैत्यालय में, चैत्यालय में पूजन करने था गया वो, तो वहां वो विद्या सिद्ध कर रहा था, तो किसी ने आकर के लक्ष्मण से ये कहा कि यदि ये विद्या सिद्ध हो गई सुग्रीव वगैरह को मालूम पड़ा तो फिर रावण को जीतना बिल्कुल कठिन नहीं असंभव हो जाएगा, इसलिए हमको इसको ध्यान से दिखाना चाहिए कि जिससे ये विद्या सिद्ध नहीं हो। तो सब लोग मिलकर सुग्रीव वगैरह वो उनके पास गए रामचंद्र जी के पास, और उन्होंने सब स्थिति बताई कि यदि हम कुछ विघ्न करके उसे बाधित नहीं करेंगे तो विद्या सिद्ध हो जाएगी और फिर अपन युद्ध नहीं जीत पाएंगे। तो रामचंद्र जी ने कहा देखो भाई जो बात तय हो गई वो हो गई, अष्टानिका के दिन है, अष्टानिका में एक दूसरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये हमारा तय हुआ है, तो हम तो वो उसका पालन करेंगे। कहनी साहब आप सोचो फिर आप गारंटी से हार जाओगे, जो होगा सो देखा जाएगा। कहने नहीं फिर वो सीता आपको बहुत प्रेम करते ना सीता से, फिर सीता जिंदगी में आपको कभी नहीं मिलेगी, सोचो गंभीरता से। मैंने बहुत भय उन लोगों ने दिखाए, लेकिन रामचंद्र जी ने कहा देखो भाई जो कुछ भी हो उसका मैं वो भोगने को तैयार हूं, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर अब युद्ध विराम जो है उसका भंग नहीं करूंगा और मैं कोई वो नहीं करूंगा, तुम कुछ मत करो, तुम धर्म ध्यान करो शांति से। अब उन्होंने देखा कि सुनते ही नहीं है, चिंता उन्हें बहुत थी, तो वो लक्ष्मण के पास गए, तो लक्ष्मण जी से भी ये बात कही उन्होंने कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उन्होंने कहा मेरे पास क्यों आए, रामचंद्र जी से कहते कि साहब वहां से तो हम आई हैं, लेकिन हमने बहुत समझाया लेकिन वो मानते नहीं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब यही तो है, तुम समझते तो हो ही नहीं, उनके पास जाने की जरूरत ही कहां थी, अब पहले ही से मेरे पास आते ना तो जब काम सरल होता। अब उनने मना कर दी क्यों है? पर अब कुछ करना जैसे अपन कहते पहले तो ऊपर से अंधा करवा लाए और अब मेरे से कहते हो कि तुम्हें से करवा दो, अब नहीं हो सकता कि आप हम तो इसलिए आए आप चलो और आप समझाओ, अरे समझना होता तो तुमसे ही समझ जाते, उनमें इतनी समझ है का क्या की युद्ध की, चलो कोई बात नहीं है मैं देखता हूं। और उन्होंने जाकर के पूरे ग्रुप में जिसमें नेता थे कौन लक्ष्मण जी, बहुत उनको उपद्रव किए, लेकिन वो रावण नहीं देगा तो नहीं देगा। अंत में यहां तक लिखा है उसमें कि इनने क्या किया कि एक नकली मायामयी मंदोदरी बनाई और उसके बाल पकड़ के और ऐसे खींचते हुए और ऐसा उठा करके एक आदमी ले जा रहा है, रावण को चिल्लाई कर रहा है, हे रावण तेरे सामने मैं तेरी पटरानी मंदोदरी को ले जा रहा हूं, ऐसे बाल पकड़ के खींच के, तेरे में ताकत हो तो छुड़ा ले। ऐसा बहुत बहुत चिल्लाया उसने सब लिखा और सामने आमे घूमा और कुछ चक्कर काटे हैं, लेकिन आखिरकार रावण नहीं देगा तो नहीं देगा। मैंने रावण का क्वालिटी वहां मालूम पड़ती है, दृढ़ता भी, ध्यान की भी मजबूती और अपने किसी काम के लिए जो बाध्यता है वो आखिरकार से बहुरूपी विद्या सिद्ध होगी। अब ये एक घटना है जो परम पुराण में लिखी है। अब इससे नहीं मालूम पड़ता है कि दोनों की परिणति में कितना फर्क है, दोनों एक साथ लड़ रहे सब बात एक है, लेकिन एक अपने लौकिक न्याय के प्रति भी जो समझौता हो गया है उसके प्रति कितना प्रतिबद्ध है कि हर कीमत पर उसे पालन करना चाहता है। क्यों? वो पत्नी लक्ष्मण की नहीं थी, सीता राम की थी। ज्यादा नुकसान तो राम को था ना, व्यक्तिगत विचार करते तो भी फिर भी वो नहीं लड़े और लक्ष्मण ने उपलब्ध तो कुछ नहीं कर पाया। विद्या तो सिद्ध होगी रावण को, लेकिन फिर भी कोई न्याय नहीं, अन्याय नहीं, धर्म नहीं, अधर्म नहीं, चित्तालय में वो ध्यान कर रहा है, कुछ नहीं, कहीं भी कैसे भी। तो ये जो परिणति का अंतर है वो उनको निरंतर देखा जा सकता है और उसका उसकी वजह से वो जहां गया वहां गया। और रामचंद्र जी की वो निरंतर की जो परिणति शुद्ध थी वो उसका फल है। ये बात मैंने आपको इसलिए सुनाई कि ये जो गाथा वो एक कलश है। इस बात को ही कहता है, मैं कई दिन से कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची, अब स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूं कि किसी एक घटना विशेष की बात नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि ज्ञानी को बंध नहीं होता और अज्ञानी को होता है, तो ऐसा नहीं है ज्ञानी पूजा पाठ कर रहा है, ज्ञानी आत्मा का ध्यान कर रहा है तो उस वक्त नहीं होता, उस वक्त की बात नहीं, निरंतर उसे बंध नहीं होता और निरंतर उसे होता है। वो मिथ्या दृष्टि सामायिक कर रहा हो, पूजा कर रहा हो, कर सकता है ना, जब नौ में गिर पे जाने लायक धन धर्म पाल सकता है तो ये सत्य वितरागी धर्म की भी कर रहा हो, तब भी उसकी परिणति में वो कमी है कि उसे निरंतर बंद होता है। और सम्य दृष्टि भोग में भी हो, युद्ध में भी हो, तो उसकी परिणति में वो निरंतर है जिसकी वजह से उसे बंद नहीं होता। मेरे कहने का मतलब जब और तब से नहीं जोड़ना है इसे। हमारा सारा ध्यान सिर्फ इस पर है कि हम 24 घंटे देखते हैं कि एक घंटे आप प्रवचन सुनने आ गए कि मंदिर के दर्शन करने आ गए, तो आप अपने को थोड़ा ज्यादा धर्मात्मा समझने लगते हैं और दूसरे काम में लगे हैं तो उस वक्त अपन को पापी समझने लगते हैं, समझे ना। एक दिन नहीं आ पाए तो उस वक्त पापी समझने लगते हैं, ऐसे कहते हुए बहुत लोग मिलेंगे, बीमार हो गए, टांग टूट गई, अब यहां आ नहीं सकते, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया, अब हम क्या करें, हम तो बड़े पापी हैं, हमारे पाप का उदय है, प्रदूषण निकल गए, हम भगवान के दर्शन करने नहीं आ पाए। जो उसे अपने पापी पापी मानते ना, पाप जबरदस्ती उसे क्या है, तू वहां था, तेरा आत्मा वहीं था ना, धर्म वहां था। इससे मतलब देह की क्रिया से तूने धर्म माना ना, मेरे कहने का मतलब करने क्या नहीं कर पाया, इसका मतलब मैं कोई छूट नहीं देना चाहता हूं कभी, तो आप एक किसी दिन मंदिर नहीं आएंगे, किसी दिन जो पूजा नहीं करेंगे, ये बात नहीं है। सवाल ये है कि जो हमारी निरंतर की परिणति, उसे जो बंध अबंध का भेद है, ज्ञानी को बंध नहीं है और अज्ञानी को बंध है, वो उनकी कोई वर्तमान क्रिया के कारण नहीं, जब से वो ज्ञानी बना तब से लेकर जो उसकी निरंतर परिणति के अंदर शुद्धि है उसकी बात है। अगली गाथाओं में ये बात आएगी थोड़ी, वो सामान्य और विशेष की बात जब आएगी मैं उसे उस वक्त समझाऊंगा, लेकिन अभी जो मैंने बताया इसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। उसमें सामान्य और विशेष का क्या अंतर है? विशेष माने वो क्रिया विशेष, सामान्य माने बस जनरल, बस वो उसकी जो जनरल परिणति है चौथे गुण स्थान वाले की, वो इसके लिए कह रहे सम्यक दृष्टि नियत भवती ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के ज्ञान और वैराग्य शक्ति नियम से होती है। हमने तो नहीं देखी साहब, हम तो अच्छे अच्छे सम्यक दृष्टियों को देखा, गुस्सा करते देखा, लड़ाई लड़ते देखा, खूब यदि एक दिन खाना ढंग से नहीं बना तो लड़ते देखा। और हम उदाहरण दे देके समझाते हैं, चार भाई हैं और एक एक थाली में खाना खाते हैं और रोजाना बड़े शौक से चटनी खाते हैं, क्यों? लेकिन वो एक दिन चटनी नहीं बने तो अंतर देखो चारों का। अपन नहीं दिया होगा उदाहरण, तुमने सुना तो होगा ना, सब हंस रहे हैं तो इसलिए मालूम पड़ता सुना है, क्यों? इसलिए मांगा नहीं मेरा मतलब। और हम बताते हैं कि ये परिणति का अंतर एक कुछ नहीं, वो जिसको सम्यक दृष्टि हो और वो कहे फेंक दे थाली के, नहीं जरा चटनी बनाओ फिर खाऊंगा, तो भी वो सम्यक दृष्टि हो सकता है। और वो मिथ्या दृष्टि कोई बात नहीं है, वो भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है, वो वहां वो उदाहरण नहीं, जब वो दिया होगा तब दूसरी बात है, समझाई होगी। अभी जो दे रहा हूं वो दूसरी बात समझा रहा हूं कि तुम एक क्षण क्षण के उससे निर्णय मत करो, उसके अंदर की धारा वो ज्ञान और वैराग्य, कौन सा वैराग्य खोजोगे तुम उसमें? ज्ञान तो सीधा सच्चा है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हो गया तो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया, बस खत्म बात हो गई। अब क्या ज्ञान हो गया? कि लड़ना नहीं चाहिए, एक ज्ञान हो गया ना सावरा जी, कि नहीं ये कोई ज्ञान शान थोड़ी है। तो क्या ज्ञान हो गया? कि ये पर पदार्थ मैं नहीं हूं, कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मैं हूं, इसका नाम ज्ञान है और इसकी वजह से वो सम्यक दृष्टि है। लड़ना नहीं चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए इसकी वजह से नहीं है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड़ना चाहिए अच्छी चीज है, लेकिन किसी की पहचान का चिन्ह तो हमें जानना चाहिए ना। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं उन बातों का पोषक हूं, तो पोषण का सवाल नहीं है, मैंने सम्यक दर्शन का जो पहचान का चिन्ह है, सम्यक दर्शन जानना है ना, तो वो क्या है वो चिन्ह? हम उसे गुस्सा करते देखें तो मिथ्या दृष्टि मान लेंगे, क्यों? तो कहते हैं तूने भी सम्यक दर्शन की पहचान कहां करी? कल कहा था ना सर, मैंने अन्ना जी से कहा था कि आप लोगों से कहा था पक्का याद नहीं, कि वो जो हमारे जीवन में पाप दिखता है वो दिखने वाला पाप तो सब अप्रत्याखानावरण प्रत्याखानावरण कर्म के उदय में होने वाला पाप है भाई साहब। जो हमारी शिकायत है कि हमने अनंतानंदी के साथ चली गई लेकिन परिणति में शुद्धि क्यों नहीं आई? क्यों? अरे जो आई है जरूर आई है, लेकिन जो परिणति में दिखता है वो अनंतानंदी वाला परिणति में दिखता ही नहीं है। वो तो ऐसा अनंत गुणा पाप ऐसा है जो हमारे मनों में है और जीवन में दिखाई नहीं देता। देखो हमने अच्छी छाती पे हाथ रख करके विचार करना, अपना अपना परिणाम समझने के लिए नहीं करो, अपना परिणाम मत जानो, वस्तु स्वरूप समझने के लिए। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों आदमी इस दुनिया में नहीं है कि जिन्होंने पुरुष ने पर स्त्री, स्त्री ने पर पुरुष को कभी ऐसा स्पर्श भी नहीं किया हो? क्यों? अभी तो सिर्फ मैं मनमथन काय की बात करता हूं, बात तो इससे आगे की है, लेकिन वे सब के ये गारंटी दे सकते हैं कि उनके मुंह से कभी ऐसा शब्द भी नहीं निकला कि गुस्से में निकल गया होगा साहब, कि कैसे? कि जब जब मां बहन की गाली देते हैं ना तो ये क्या है? वो वाणी से परस्त्री सेवन हो गया ना, नहीं आया ख्याल में? देखो वो लिखा ना, उसने कहा था कहानी, तो वो तांगे वाले का वर्णन किया है उसने, चंद्रधर गुरु ने सुनवाना है, वो क्या कहता है, है? कि उस उन घोड़े की नानी से निकट का संपर्क स्थापित करता हुआ क्या? अरे उसने ऐसी कोई गाली दी होगी मुंह से तो वो कभी लिखना नहीं चाहता लेखक असभ्य भाषा को, तो उसने इस भाषा में लिखा कि घोड़े की नानी से निकट का संपर्क स्थापित करता हुआ। अब देखिए मैं उदाहरण आप दे रहा हूं, अरे साले, तो एक तूने साले कहा तो उसकी बहन से निकट का संपर्क वाणी से स्थापित किया तुमने। अब बोलो कि जिसने काया से किसी को छुआ नहीं है उसने किसी को आज तक मुंह से साले कहा कि नहीं कहा, जो साला नहीं है उससे क्या समझ गया? तो वाणी से आप ज्यादा विकृति है ना, मैंने काया से ज्यादा विकृति वाणी में है। अभी आपने कल्पना नहीं की होगी, अब आगे जाओ तो तेरे मन का भी कहीं लंच मात्र चलायमान आज तक नहीं हुआ। जैसे तूने काया की मर्यादा पाली ऐसे तूने मन में भी ऐसा हुआ है क्या? तो करोड़ों आदमी में से एक आदमी भी ये नहीं कह सकेगा कि ऐसा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि काया किसी अपेक्षा वाणी में ज्यादा पाप है और वाणी से ज्यादा मन में है, और वो असंख्य गुणा हो सकता है, अनंत गुणा में नहीं कहता हूं, ये अनंत गुणा में करणानियोग वालों को छोड़ देता हूं। अरे मैं ये कहता हूं कि मन वचन काय तीनों में जो पाप प्रकट होता है उससे अनंत गुणा पाप आत्मा में है। वो उसका वो जो प्रकट नहीं हो पाता है वो अनंतानबंदी का कार्य है, क्योंकि अनंतानबंदी के उदय में जितना महान दुष्टता का कार्य होता है उसे कानूनन निषेध है, समाज से निषेध है, तो डर के मारे, भक्ति के मारे, सभ्यता के नाते वो नहीं कर पाता है। तो वो अनंत पाप गया तेरे में से, आत्मा में से। अब तुझे कहां से दिखाई देगा? ये बाहर का तो उतना दिखाई ही देगा क्योंकि ये डॉक्टर तय खाना बन गई उदय से था। गुरुदेव बोलते थे ना, जब माँ बाप को दीक्षा देते थे वो दीक्षा कल्याण के दिन, मैं काया से भ्रम कर लेता हूं ऐसा बुलवाते थे। क्यों बुलवाते? फिर उसका व्याख्या भी करते थे, क्योंकि वो जानते थे कभी मन से और मैं ऐसे सब कह दूं मन वचन काय से, तो वो अभी भूमिका होती उस गुणस्थान की, सातवीं प्रतिमा के ऊपर की भूमिका होती पंचम गुणस्थान के, तो वो शायद संभव था, वो भी काया वाला था। जब वो 18,000 प्रकार के शील धारण करता है समझ लो मुनिराज की भूमिका होती तो ही हो सकता है। वो इसके हाथ में है ही क्या, मैं छुड़वा के करूंगा क्या? वो इतनी मर्यादा पाल ले तो ही बहुत है, इसलिए वो बात में बराबर। और फिर शास्त्र में ऐसा भी कहते थे कि देखो हारी बीमारी में एक दूसरे का इसकी छूट है, इसकी छूट है, ऐसी छूट, ऐसा भी बोलते थे, क्योंकि बहुत लोग मिसगाइड होते हैं और फिर बहुत घबराते हैं। आप समझे ना? तो ये जो ये पाप करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं कि मन वचन में करना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि वो तो होने ही वाला है, तो उसके होने से फिर तू अनंत घबराहट तेरे में नहीं हो। जैसे डॉक्टर कहता है कि मैंने तुम्हें ये दवाई दी है तो इससे सिर दर्द हो सकता है और पेशाब पीली आएगी, तो घबराना नहीं। कहता कि नहीं, कहना क्यों? मैं क्यों बताया तुम्हें? कहते भैया ये रात को सिर दर्द होता और रात को पेशाब करने जाता, पीली पेशाब आती तो मुझे रात को 2 बजे जगा था, मैंने इसका कुछ नहीं किया, मैं अपनी शांति से मेरी रात कट जाए इसके लिए इसे बताया है। क्यों? तो ये दवाइयां दे रहा हूं, अब 3 दिन तक दर्द रहेगा, ऑपरेशन हुआ है तो दर्द रहेगा, अब मेरे को रोजीना रोजीना परेशान मत करना। क्यों? तुमने कहा था 7 दिन तक रहेगा, 2 महीने बाद। अरे भैया अब ये तुम्हारा जो हड्डी जैसी टूटी थी और हमने जोड़ी है तो जैसी पहले जुड़ी थी ओरिजिनल वैसी जुड़ती है क्या? अब जिंदगी में तो अपनी दिनचर्या पूरी कर लो बेटा, इतना ही समझना बस खत्म। इसका ही नाम ठीक हो गए है, इससे ज्यादा ठीक हो गए का अर्थ नहीं समझना। वो डॉक्टर समझाता है या नहीं समझाता है? तो ऐसे ही हैं, हम तो समझा रहे हैं उसका पोषण नहीं कर रहे हैं कि वो जो ज्ञानी कौन सा ज्ञान कि वो सही बात जानता है ये तो उसका सम्यक ज्ञान। अब उसे तुम क्रिया में देखना चाहते हो, वो तो सम्यक ज्ञान तो सिर्फ जानने के लेवल तक है, तो सम्यक दर्शन श्रद्धा के लेवल तक है क्या रमेश? अब क्रिया के लेवल पे क्या, जो अनंत आनंद दी गई उसका असर देखेगा क्रिया के लेवल पे, तो वो अभी प्रगति ही नहीं हो पाता है हमारी समाज की व्यवस्था में। चौथे काल में थोड़ा थोड़ा किसी किसी का प्रकट हो जाता था, जिनका वर्णन शास्त्रों में है, उन राजाओं महाराजाओं का, कि जिनके ऊपर कोई था ही नहीं, जिन्हें कोई ना राज का भय था ना जिन्हें समाज का भय था। अपने पुराणों में एक कहानी पढ़ी होगी, सुनी होगी, कि एक राजा अपनी लड़की पर मोहित हो गया, ख्याल नहीं ना, और अब उसको उस पर सामाजिक सील लगवानी थी, वो अपनी लड़की से शादी करना चाहता था, और अब अपने मिनिस्टरों से सबसे जो सभा के सभासद थे ना उनसे सामाजिक सील लगवानी थी, तो वो उनसे बहुत उनके कहानी किस्से हैं, उसमें वो एक ऐसे कहानी सुनाते, कहता है ये मैं आप लोगों से एक प्रश्न करता हूं कि कोई चीज अपना, हमने अपना खेत है उसे हमने संभाला खाया, उसमें ये बोया, फिर अच्छा अच्छा अनाज उत्पन्न हुआ और अच्छे भुट्टे लगे, तो उसे हमें खाने का अधिकार है कि नहीं? क्या ऐसी तरकीब लगा लगा कर वो ऐसी कहानी सुनाता और उनसे वो हां करवाना चाहता इनडायरेक्ट। वो मिनिस्टर लोग थे वो सब समझ गए कि एक इसके मन में ये पाप है और ये हमसे अनुमोदना करवा के हमें वह पाप में ढकेलना चाहता है, तो वे दूसरी कहानी करते और उसमें ये बताते कि भले ही वो हमारे मलमूत्र हैं, हमने ही पैदा किए, हमने ही ऐसे किए, फिर भी वो सेवन करने लायक हैं क्या? वो ऐसे उदाहरण देता, आप समझिए ना। ऐसी कई कहानियां दोनों तरफ से चलती रही, वो उसमें यही बताया है कि वो अपने पाप का पोषण करना चाहता और वो उसको अनुमोदना नहीं करना चाहते, लेकिन इशारे में दोनों बातें करती रहे। तो इसलिए यहां ये कह रहे हैं कि वो जो पाप आपके जीवन में दिखाई नहीं देता है वो तो राजदंड का भय है, समाज दंड का भय है, आपकी ये परिस्थितियों, और जिन राजाओं को जैसे रावण जैसे राजा को न समाज का भय था, न राज का भय था, न किसी का, अभी देर डर लगता है कि मैं किसी औरत से छेड़खानी करूं और मेरी पत्नी को पता चलेगा तो खाना खाना मुश्किल हो जाएगा, और उसे ये भी डर नहीं था कि मेरी 18,000 रानियां हैं उन्हें पता पड़ेगा तो वे क्या कहेंगी, क्यों? जनता का डर नहीं था, भाइयों का डर नहीं था, सेना का डर नहीं था, समाज का डर नहीं था, तब तो वे सीता का अपहरण कर सका, तब तो वो इतना क्लियर साफ शब्दों में बोल सका कि मैं किसी सीता को अपने घर में रखूंगा, शादी करूंगा, मैं ये रखूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये बात ना, और बाकी किसी पापी के जिनके मन में है वे कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं, वो मन में नहीं है, वो हम मानने को तैयार नहीं है, वो कहते तुम्हारा राज वैसे है, वो प्रकट नहीं हो रहा भाई, इतनी सी बात है। अब क्यों जैसे झंझट में पड़ते हो, क्यों इस चक्कर में डालना चाहते हो? तो अब जो अनंतानंदी जाएगी तो वो जो तुम्हारे जीवन में प्रकट दिखाई नहीं दे रहा है पर वो ही होगा, वो ही जाएगा, तो अभी कैसे दिखेगा? और जो दिखाई दे रहा है वो तो अप्रत्यक्ष वन कर्म की वजह से है, ये हमारी समझ में नहीं आता, इसलिए सब लोग कहते हैं रंजमात भी संयम नहीं है, रंजमात भी संयम नहीं है, हमारे पंडितों ने भी स्वीकार कर लिया, आचार्यों ने भी स्वीकार कर लिया और लिख दिया उनने, नो इंद्रिय विरक्ता नो जीवे था विरे तसे बापी जो सद्दिजनोत्तम सम्मादिट्ठी हवई जीवो। पढ़ा आया तो होगा मोमर सार में कि जो पांच इंद्रियों से विरक्त नहीं है, जो त्रस और स्थावर की हिंसा से विरक्त नहीं है, नो इंद्रियेषु विरदा नो जीवे थावरे तसे बापी, जो स्थावर त्रस जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं है, बस जो सिद्धद्वी जनितम जो जनैन भगवान की वाणी का विश्वास करता है वह सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि की परिभाषा चौथे गुणस्थान वाले की गोमरसार में ये लिखी है, और हम जब गोमरसार पढ़ते थे तो हमको बहुत आश्चर्य होता था, बस इतनी भगवान ने जो बात की बस सही है, उसमें शंका नहीं करो तो बस हम सम्मा दृष्टि है, और उसमें शंका कही तो सम्मा दृष्टि नहीं, ऐसा लगता था। और फिर उसमें हमने छरला में भी पढ़ लिया कि जिन बच में शंका न था, जिन बच में शंका मत करो, शंका होए नहीं धारण मत करो। क्या मतलब? ये बात सच्ची है कि गलत? ये शंका होगी। अरे ये तो प्रश्न है, ये तो जिज्ञासा है। शंका क्या है? ये शंका नहीं है। इन लोगों ने, वक्ताओं ने अपनी आफत टालने के लिए घुसा दिया है कि तुमने हमारी बात में शंका करी तो हम तो कह देंगे या तो शास्त्र में लिखी है, और उसमें शंका करी तुम मिथ्या दृष्टि। अरे ये तो जिज्ञासा है, शंका नहीं है भाई साहब। तो क्या है कि आत्मा शरीर, शरीर आत्मा, शरीर की क्रिया का कर्ता आत्मा है कि नहीं है, इसमें निर्णय नहीं होना और शंकाशील रहना, इसका नाम शंका है। निशंका होंती निर्भया तेणे, समय साल में लिखा ना, वो निशंक है से निर्भय है। अब उन्हें तो भय लिखा, भय का नाम शंका है। अब अपन जो शंका समझते हैं वो भय समझते हैं, अच्छा आज से भय समझ लेते हैं, जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ। तो वो चाहे तुम होने वाले भय को समझ लोगे तो क्या है फिर भय? सप्त भय विप्र मुक्का, के सात भय से रहे। और सात भय कौन है? वो इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय जो लिखे हैं, वो भय की बात है। कि कोई आत्मा तो अमर है वो मान नहीं सकता, ये देह छूट कर मेरा मरण नहीं होगा ऐसी बातें ही नहीं है। ये देह वाले मरण की बात नहीं है, आत्मा की अनादि अनंतता का भरोसा है वो है? ये लोक भय नहीं है और परलोक भय नहीं है। हम तो बहुत बढ़िया काम करे हैं, हमारे हमें किसी का डर नहीं है अभी। और परलोक में हम नरक में कैसे जाएंगे? हम स्वर्ग में जाएंगे, हमें परलोक का भय नहीं है। ये नहीं है भाई साहब। तो क्या है कि भाई लोक के जितने भी जीव हैं और पर पदार्थ हैं उनसे मेरा कोई लेना ही देना नहीं है, मेरे भला बुरे के कोई जिम्मेवार ही नहीं है, तो उनसे क्या डरना? जहां जाऊंगा वहां चला जाऊंगा कि नरक में नरक में। सम्यक दृष्टि राजा सैनिक ये सम्मान दर्शन था तो वे निर्भय थे कि नहीं थे? क्यों ये भी बता दे कोई, तुम नरक में जाने वाले हो तो भी निर्भय थे कि नहीं थे? और मैं तो स्वर्ग में ही जाऊंगा, नरक में जाऊंगा ही नहीं, क्यों? इसका नाम निर्भयता थोड़ी है। भय कोई चीज सही समझते ही नहीं, क्या करें दिक्कत? और जो हमने पढ़ रखा है आज तक वो सब ऐसे ही ऐसा है सबका। अब यहां वो कह रहे हैं सम्यक दृष्टि नियत मस्ति भवति भक्ति अस्ति कहूं ज्ञान वैराग्य शक्ति। अब वो ज्ञान और वैराग्य, अब वैरागी होना चाहिए समझी को काल के लिखा, और वैरागी नहीं है तो वो सम्मा दृष्टि नहीं है बस खत्म। और वैरागी का मतलब गुड्डी चांद, तो जिसके भाग्य से सारे भाग में बाल झड़ गए और नहीं है तो वे तो सम्मा दृष्टि हो ही जाएंगे। मैं तो ऋषि तो ये बाल है तो डरी है क्या है? स्वम वस्तुत्वम कलयितुम अयम स्वान्न रूपाति मुक्ता। सम्यक दृष्टि के नियम से ज्ञान और वैराग्य शक्ति होती है, क्योंकि वह स्वरूप के ग्रहण और पर के त्याग करने की विधि द्वारा स्वयं के वस्तुत्व का अभ्यास करने के लिए यह स्वा है और यह पर है, इस प्रकार के भेद को परमार्थ से जानकर स्वा में स्थिर होता है और पर से राग के योग से संपूर्णता विराम लेता है। अब जो लगा ना कि पर स्वा में स्थिर होता है, इन दोनों का भेद जानकर, ये है दोनों पर और स्वामी भेद जाना माने एक देव दूसरे देव का कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, स्वामी नहीं है, इसका नाम भेद जानकर। और स्वामी स्थिर होना माने अब तो आ गया ना ध्यान। अरे नहीं है, ये श्रद्धा की बात है रही, श्रद्धा में ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, ऐसी प्रतीति हो जाना उसका नाम ज्ञानसिद्धान में स्थिर होना है। ऐसा जानना हो जाना इसका नाम ज्ञान में स्थिर होना है। अब तुझे क्रिया चाहिए, अब क्रिया की स्थिरता, ये तो चौथे अनुष्ठान की बात चल रही ना, यहां क्रिया की स्थिरता की बात कहां है। लड़ते वक्त, खाते वक्त, पीते वक्त बता रहे, 24 घंटा वो अपने में स्थिर है, तो वो स्थिरता होनी चाहिए ना। अभी रजस्गुण चिट्ठी के प्रवचनों में मैंने ये बात पर बहुत वजन दिया है कि अनुभव दो प्रकार का होता है। एक तो वो जो हमें अनुभूति के काल में होता है, जिसे हम सारा लोग अनुभव समझते हैं, और एक वो जो निरंतर कायम रहता है। अभी नियम साहब की गाथाओं में बार बार आता निरंतर निरंतर निरंतर, वो वर्णन ऐसा है जो निरंतर नहीं रहता है उस टाइप का बाहर की। तो मैंने कहा ये कैसे, आखिर हमको ये निरंतर रहने वाला भैया की खोजना पड़ेगा ना। कौन से वैराग्य की बात है कि जब वो भरत चक्रवर्ती कह रहा था तुम अपनी लड़की से शादी मेरी करता है कि नहीं करता है, नहीं तो सामने लड़ने को तैयार हो जा, उस समय जो उसके अंदर वैराग्य था उस वैराग्य की बात कर रहे हैं। चक्रवर्ती की 96,000 शादियां वास्तव में कोई शादी के लिए शादी नहीं है, वो तो उसकी राजनीति है। क्या राजनीति है ऐसा साहब, शादियों करने में राजनीति कैसे होती है? कौन कहता कैसे नहीं होती शादियों में राजनीति। वो क्या करते थे, किसी राजा से कहा कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार करो, चक्रवर्ती की विजय में एक बूंद खून की नहीं बहती है, लड़ाई तो होती नहीं है। तो वो कहता हाँ साहब मंजूर है, क्योंकि देखता इतनी बड़ी फौज में इतना सा आदमी क्या करूंगा, अब चक्रवर्ती क्या करे। तो कहता अच्छा ठीक है, तो तुम अपना ये राजकाज संभालो, अब हमारी तरफ से तुम नियुक्त हो गए, ख्याल में आई ना। फिर देखेंगे हम जब पहुंचेंगे अयोध्या, तब फिर बताएंगे तुम्हें क्या करना कैसे करना, जब तक तुम जैसे संभाल रहे वैसे ही संभालो, क्या बस तुम थोड़े से रत्न और लड़की की शादी हमसे कर दो, और लड़की भी तुम्हारे यहीं रहेगी, वे रत्न भी तुम अपने यहां रखना, जब हम अयोध्या पहुंचे तब लेके आ जाना दोनों को, पढ़ लेना ऐसे ही है। ना अभी तुम्हारी लड़की की हमें जरूरत है, पर ना तुम्हारे रत्नों की जरूरत है, ये तो ठीक है, तो रत्न तो ठीक है। लेकिन लड़की क्यों, क्योंकि दुनिया में जाति धन धरती हरी ताही न लीजे संग, और जो संग राखे ना बने तो करु राख अपंग, तो करु राख अपंग ताही परतीत न कीजे, सो सो गन्ने खाए चित्त में एक न दीजे। गिरधर कवि ने लिखी राजनीति, क्या लगा सुनो, छंद का अर्थ समझ में आया क्या नहीं। जाकी धन धरती हरी, जिससे तुमने धरती छीन ली, मैंने राज्य छीन लिया और धन पैसा छीन लिया। जाकी धन धरती हरी ताई न लीजे सही, उसे कभी साथ में देखना, क्या कह रहे उसे खत्म कर देना, मार देना, हटा देना, देश निकालना, दे देना। जाकी धन धरती हरी ताई न लीजे संग, कि जो संग राखे ना बने। अब चक्रवर्ती 3 सेकंड से बाहर कहां निकाल दे उसे, ऐसा संभव होता नहीं, हम निकालना संभव नहीं है। तो कहते जाकी धन धरती हरी ताही न लीगे संग, जो संग राखे ना बने तो क्या करे, तो अपंग करके रखना, हाथ पैर तोड़ के रखना, क्या कह रहे जी। माने वो तुम पर आक्रमण करने लायक ना रहे ऐसा बना के रखना, तो करी राख अपंग, समझे ना। सौ सौ गन्ने खाए चित्त में एक न दीजे, वो सौ सौ कदम खाए कि मैं धोखा नहीं करूंगा, मैं धोखा नहीं करूंगा, मैं धोखा नहीं करें, तो भी मानना नहीं, उसका विश्वास नहीं करना। क्योंकि जिसकी धन धरती हरी है वो कितना ही दबा रहे, लेकिन जब उसे मौका लगेगा तो तुम्हें कितना ही उपकार करना बीच में, वो सब भूल जाएगा, उस दिन की बात याद करेगा और तुम्हारे बदला लिए बिना रहेगा नहीं। अब हर चक्रवर्ती के सामने ये समस्या थी, हर चक्रवर्ती के सामने होती है कि अभी कैसे करें। आज तो उसने हाथ जोड़ लिए, कह दिया सब, और कल मैं ये चला जाऊंगा और मेरे से कोई बलवान आ गया, उसने से दे दिया, कोई लड़की उसे दे देगा, सोना उसे दे देगा, मेरे विरोध में खड़ा हो जाएगा। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या उपाय था सबसे बढ़िया? तो दुनिया में नीति एक श्लोक और है दादा, वो सुनाओ कि आदमी के सबसे बड़े ज्यादा दुख कौन कौन से हैं। तो बात है ना, विधवा च कन्या है, अयोग बेटा, विधवा, कन्या, ये छह दुख गिनाए हैं। नीति का श्लोक है, अभी याद नहीं है, बहुत पुराना पड़ा होगा, करीब 50-60 साल पहले। क्या उन्हें विधवा कन्या, ये सबसे बड़ा दुख जगत में विधवा कन्या का है। तो ये आदमी मुझे मारकर अपनी बेटी को विधवा नहीं करना चाहेगा, इससे बड़ी गारंटी और दूसरी नहीं हो सकती, इसलिए वो शादी करता है। मुझे 32,000 मुकुट जो राजा होते हैं ना, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा 32,000 रानियां तो मिलेच्छों की होती हैं लड़कियां, अब उनके कोई संतान नहीं होती, मतलब सिर्फ शो की चीजें हैं वो तो पॉलिटिकल राजनीतिक शादियां हैं वे, ये कोई शादियां वादियां नहीं है। नहीं देखे बढ़ावे में 83 वर्ष की उम्र, 83 लाख पूरब की उम्र में, 63 लाख पूरब की उम्र में चेक करने जा रहा है वो। माने इसका क्या भरोसा कि जब जब मैं अयोध्या पहुंचूंगा और बुलाऊंगा तो लड़की को रत्नों को लेके आ जाएगा और मैं जो कहूंगा वैसे यहां पर राज्य करेगा, इसके लिए थी वो। अब वो ये कहते हैं कि वो उस पर उसे विश्वास है कि नहीं, क्या माने बोलो क्यों क्यों विश्वास है कि नहीं? पक्का विश्वास है क्या कि जे धोखा दिए बिना नहीं माने। यदि नहीं होता तो उसकी लड़की से शादी क्यों करता? समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही कैसी भी बाहर की परिणति हो, अंदर में त्रिकाली धर्म में हूं और ये पर मैं नहीं हूं, इनका स्वामी कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूं, ये जो श्रद्धा के लेवल पर कायम रखना, इस श्रद्धा के लेवल का वैराग्य है, और ज्ञान के लेवल पर ये बात रखी रहना, ये ज्ञान के लेवल का वैराग्य है। और अनंतानंद जी के अभाव में जो परिणति शुद्ध हुई है वो सर्व के लेवल का वैराग्य है। अब ये तीन वैराग हम नहीं समझते, तो रमल जी ने लिखे हैं बहुत बढ़िया वाक्य चाल लेन का, मैंने मुख्यमंत्री प्रकाशक में एक अलग से छापा है, वो जिस सिद्धांत से ऐसा आता ना, वो सिद्धांत वो वितरागता का उत्पन्न हो, वो सिद्धांत सम्यक दर्शन है, जिससे वितरागता के प्रति ज्ञान हो वो वितरागता सम्यक ज्ञान है, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को उस वितरागता पर ही घटित किया। अब ऐसा वैराग आपको यहां देखना पड़ेगा, आप जिसको वैराग समझते हैं दुनिया में उस लेवल का वो वैराग्य ही नहीं है वास्तव में, है ना? तात्पर्य यह है कि स्व और पर का यथार्थ भेद जानकर पर से विरक्त हो, स्व में लीन होने वाले, लीन होने वाले माने ये मैं हूं, सिर्फ मान्यता के लेवल पर है ना, सम्यक दृष्टियों के आत्मज्ञान और वैराग्य की शक्ति नियम से होती है। अब ये लीन शब्द फिर धर्म पैदा कर देता है क्या? ये पक्की दृढ़ता, इसका नाम लीनता है, है ना? इस कलश में यह कहा गया है कि सम्यक दृष्टि जीवों के सम्यक ज्ञान भूमिकानुसार और भूमिकानुसार वैराग्य अवश्य होता है। ये भूमिकानुसार शब्द इसलिए डाला कि सम्यक ज्ञान में तो भूमिका कोई सवाल ही नहीं है, मतलब दो बाजू बाट है, या सम्मा ज्ञान या मिथ्या ज्ञान, या सम्मा या मिथ्या दर्शन, दो बाटियां हैं। ये तारतम्य में भेद है भूमिका अनुसार, क्योंकि श्रद्धा गुण के सम्यक परिणमन के साथ साथ ज्ञान का परिणमन भी सम्यक हो जाता है, और आत्मानुभूति पूर्वक होने वाले चतुर्थ गुणस्थान में ही अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो जाने से तत्संबंधी रागद्वेष का भी अभाव हो जाता है। इस कारण तत्संबंधी वैराग्य भी हो जाता है। यही कारण है कि यहां कहा गया है कि सम्यक दृष्टि के ज्ञान और वैराग्य शक्ति नियम से होती ही है। अब तुम ये मत मानोगे इसके हमें दिखाई नहीं दे रही, तुम्हें नहीं दिखाई देगी। यदि तुम्हें नहीं दिखाई दे रही है तो अपने डॉक्टर को अपनी आंखें दिखाओ, इलाज कराओ। मतलब वो उसमें उसके तो है और है। अब बनारसी दास कबीर ने लिखा है, आपको तो पढ़ लेते हैं, क्यों कल तो मैं नहीं पढ़ूंगा, घर के ही पढ़ के आना पड़ेगा आपको। नहीं पढ़ लेते हैं, पढ़ो। इसका भाव ख्याल में आया हो, नहीं आया हो तो नीचे लिखा है, पढ़ लेना शांति से। और कल अपन अगली जो गाथाएं हैं ना, इनको बात करेंगे।